ओम शांति। एक अंग्रेजी लेखक ली हंट ने एक कविता लिखी थी 18वीं शताब्दी में, और फिर उस कविता के आधार पर विश्व भर में कईयों ने अपनी अपनी कविताएं उसी कहानी पर बनाई। परंतु जो ओरिजिनल कविता है वो ये है आबू बिन आदम की, जिसमें वो कवि लिखता है कि वो आबू बिन आदम एक रात उठता है और देखता है कि उसके कमरे में मूनलाइट चांदनी है और एक फरिश्ता एक किताब पर कुछ लिख रहा है, और वो उससे पूछता है व्हाट राइट इज थाउ, तुम क्या लिख रहे हो। तो उत्तर आता है द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये आबू बिन आदम पूछता है एंड माइन इज वन, क्या मेरा नाम है। उत्तर आता है ने नॉट देयर नॉट सो रिप्लाइड द एंजल। फिर वो कहता है उस फरिश्ते से कि तुम मेरा नाम उस किताब में लिखो जो अपने फेलोमैन अर्थात बांधवों को बहुत प्रेम करता है। तो वो फरिश्ता लिखता है और अदृश्य हो जाता है। द नेक्स्ट नाइट इट केम बैक विथ अ ग्रेट वीकनिंग लाइट एंड शोड द नेम्स whom love of God had blessed, and lo, Ben Adam's name led all the rest. दूसरे दिन वो फरिश्ता फिर आता है और वो नाम दिखाता है जिन्हें भगवान बहुत प्यार करता है, और आबू बिन आदम का नाम सबसे ऊपर होता है। तो भगवान की भी किताब है जिसमें उनके भी नाम है जो आत्माएं उससे प्रेम करती है, और उसकी एक ऐसी भी किताब है जिसमें उसके नाम है जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। लास्ट संडे की जो मुरली थी उसमें कुछ अव्यक्त तो महावाक्य थे, चार की चर्चा अलग अलग स्थानों पर हुई है, दो बाकी है। तो आज वो जो अव्यक्त तो महावाक्य एक और दो थे उसकी चर्चा करेंगे। उसमें बाबा ने पूछा है, वो एक ही प्रश्न है जो शुरुआत से अंत तक है, कौन सा, मैं कौन। जब आए थे ज्ञान में तब सबसे पहले पता चला कि मैं कौन, मैं ये देह नहीं, ये पता चला। जब ज्ञान में आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़ गए तब भी एक ही प्रश्न था, मैं कौन। परंतु अब ये मैं कौन जो था वो था, मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो हूं परंतु कौन सी आत्मा हूं, और तब स्वमान का पता चला। आत्मा और आगे बढ़ी और फिर स्वमान सूक्ष्म होता गया, और सूक्ष्म नशा स्वमान का, वो आगे की अवस्था है। तब भी पर प्रश्न एक ही है, कौन सा, मैं कौन। ये मैं कौन की पहेली पीछा नहीं छोड़ती है। जब अज्ञान में थे तब भी भटक रहे थे, मैं कौन मैं कौन मैं कौन, तब भी पता नहीं था, और जब ज्ञान में आए तब धीरे धीरे आत्मा का पता, और फिर धीरे धीरे स्वमान का पता, और फिर धीरे धीरे स्वमान का नशा, और फिर धीरे धीरे उस स्वमान के नशे के साथ उस स्वमान का अनुभव, और फिर उस अनुभव में स्थित होना। प्रश्न फिर भी एक ही है, मैं कौन। और यहां पर बाबा कह रहे हैं, ये सब होने के बाद भी एक प्रश्न फिर और है अंत में भी, वो कौन सा, मैं कौन, भगवान की किताब में किस माला में हूं, 8 की 100 की या 16,000 की। प्रश्न फिर भी वही है, तो मैं कौन? जो देरी से आए उनके लिए भी ये प्रश्न है, परंतु बाबा ने कहा उनके लिए ये नहीं समझना है कि सीट सारी भर गई। क्या होता है उनके लिए? रिजर्वेशन, कोटा। और बाबा ने कितनी अच्छी, कितना अच्छा काव्य किया है यहां पर। रिजर्वेशन कोटा किनके लिए होता है? जो कोटो में कोई है और जो कोई में भी कोई है। ऐसा साहित्य और कहीं विश्व में नहीं है जहां पर दो भाषाओं के दो शब्द यमक रूप में लिए जाए और काव्य की रचना हो। तो जो लेट आएंगे उनके लिए रिजर्वेशन कोटा होता है, परंतु उसमें भी आने वाले कौन होंगे? जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो इस मुरली में बाबा ने जो अष्टरतन है उसकी निशानी सुनाई। दो निशानियां हैं, कौन कौन सी, कौन कौन सी? उनमें अष्ट शक्तियां होगी और दूसरा इष्ट होंगे। वो एक भी शक्ति कम नहीं होगी। प्रैक्टिकल में वो सारी शक्तियां दिखाई देगी। अगर एक भी शक्ति कम है तो क्या उदाहरण दिया? जैसे कोई खंडित मूर्ति, उसकी पूजा नहीं होती है, सारी शक्तियां। और ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी कभी शक्तियां कौन कौन सी है यही भूल जाता है, क्योंकि ज्ञान इतना विस्तार है ज्ञान का कि इन शक्तियों को भी धारण करना है, यही भूल जाता है। तो संकल्प करना है ज्ञान सूर्य से, उसका सारा तेज मैं अपने अंदर समा रहा हूं, उसकी सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही है। जैसे महाभारत में दिखाया है, कुंती सूर्य का आह्वान करती है और सूर्य आकर प्रकट होता है। वो कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो कहती है कि मुझे ऐसा एक तेजस्वी पुत्र की कामना है। सूर्य उससे कहता है कि तुम मेरे तेज को अपने अंदर धारण करो, उसके प्रचंड तेज को स्वयं में धारण करना। जैसे ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है और उसके सारे तेज को स्वयं में धारण करना, ज्ञान के गर्भ में ज्ञान सूर्य के तेज को धारण करना, तो नया जन्म होगा। स्वयं से ही स्वयं का जन्म। एक संत कहता है आपुलिया पोटिया लो, स्वयं के ही गर्भ से अपना ही मेरा ही जन्म हुआ है। मजची मीत व्यालो, स्वयं के ही गर्भ से मेरा ही जन्म हुआ है। ज्ञान गर्भ धारण करना और उसमें उस तेज को धारण करना और उससे स्वयं का ही नव जन्म होगा, ट्वाइस बॉर्न। उसको कहते हैं द्विज। तो ये योग का ही प्रयोग है कि ज्ञान सूर्य जैसे दिखाए ना, कुंती खिड़की पर खड़ी रहती है तो हम भी खड़े रह जाए और उधर से ज्ञान सूर्य आया और उसका सारा तेज स्वयं में, तेज अर्थात उसकी शक्तियां, उसकी सारी शक्तियां स्वयं में धारण कर लेना। तो आठ शक्तियां हैं, उन आठ में से जो अष्ट रत्न होंगे उनमें एक भी शक्ति कम नहीं होगी। प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक जीवन में वो सारी शक्तियां दिखाई देगी। ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी, अष्टरत्नों की दूसरी निशानी, इष्ट होंगे वो। इष्ट अर्थात महान मूर्त, उसको उनको यहीं पर ही महान समझा जाएगा, यहीं पर ही श्रेष्ठ समझा जाएगा, उनको यहीं पर ही बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाएगा। रामायण में वर्णन है, वशिष्ठ भरत के लिए कहते हैं कि ऐसा त्याग, भरत तुम धर्म की परिसीमा हो। वो पूछता है जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है क्या? वशिष्ठ कहते हैं तुम जो कहो वो धर्म की परिभाषा है, इसके लिए ये नहीं पूछो कि तुम जो कर रहे हो सही है या गलत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई जन जन के सारे पुण्य जो है, पूर्वज जितने सारे पूर्वज तुम में आके इकट्ठा हुए हैं, ऐसा उसका त्याग है। कहते राम तो एक, राम अनेक हो सकते, भरत एक ही है। तो उनके रहते ही उन्हें महान माना जाता है, मरने के बाद महान समझने की बात और, परंतु वो जब है तभी तो इष्टदेव, इष्ट अष्टरथन अर्थात इष्टदेव, संकल्प और चलन, विधि और सिद्धि से दर्शन देंगे सबको ब्राह्मण परिवार में ही। तो ये दो निशानियां हैं, तो ये निशानियां हैं जो आठ रतन है उनकी, जो विजयी रतन है 100 कहो या 108 उनकी क्या निशानी है? ये किसी और मुरली में बाबा ने कहा है, इसमें नहीं है। जो विजयी रतन होंगे उनकी क्या निशानी है और उनका पुरुषार्थ क्या है? उनकी भी आठ निशानियां हैं, वो किसी दूसरी अव्यक्तवाणी में। कौन कौन सी? कोई भी एक संपूर्ण निश्चय बुद्धि, संपूर्ण प्रीत बुद्धि, बाप समान संपूर्ण साक्षी, संपूर्ण माया जीत, जरा भी माया नहीं आएगी उनको, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण संतुष्टता, संपूर्ण निराकारी निर्विकारी निरंकारी, और लास्ट और कोई जो एकदम टॉप लेवल की धारणाएं हैं उनमें से, संपूर्ण नष्टो मोह स्मृति लब्ध। तो ये कुछ निशानियां हैं, किसी दूसरी मुरली में आई है जो बाबा ने कहा है ये विजयी रत्नों की निशानियां हैं, और फिर उस मुरली में इसका पुरुषार्थ भी बताया है। पुरुषार्थ क्या है? बहुत भारी पुरुषार्थ है, पर लक्ष्य ऊंचा ही रखना है, बहुत ऊंचा। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, असफलता नहीं परंतु छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना, उसमें बहुत सारी बातें कही है, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं, 8 घंटे योग का चार्ट, ज्ञान का मनन चिंतन, अथक सेवा, संपूर्ण अशरीरी अवस्था, कर्मयोग, ऐसी बहुत सारी बातें उसमें कही है। आज की मुरली की शुरुआत कहां से है? योग तो बहुत अच्छा है, अमृत वेला है। दिन भर में क्या कर रहे हो? दिन भर में पोता मिल क्या है? दिन भर में कितना बाप की याद में हो? दिन भर कितना सदर्शन चक्रधारी होकर चलते हो? आज कहां है ना ये सारा? और जो रजिस्टर नहीं रखते वो कौन है? वो है कौन? नाम क्या दिया उनको? चंडिका देवी। और जो स्वयं को ठगते हैं, मिया मिट्ठू, आत्म प्रवंचन, अध्यात्म में सबसे बड़ा दोष या खोट है आत्म प्रवंचन, सेल्फ डिसेप्शन। खुद ही को समझाना ये मैं ठीक कर रहा हूं, ये श्रीमत अनुसार है, और खुद को यह भी पता है कि मैं धोखा दे रहा हूं स्वयं को, स्वयं स्वयं को धोखा देना, क्योंकि सभी पुरुषार्थी है, सभी को सारा ज्ञान है, परंतु सूक्ष्म जो चेकिंग करनी है कि मैं स्वयं को कहां धोखा दे रहा हूं। यह वैसे ही जैसे दो व्यक्ति, एक व्यक्ति चेस खेलता है, ठीक है, वो चेस सामने है और वो इधर है, इधर से खेलता है और फिर वही उधर जाके उधर साइड चला जाता है और फिर उधर से खेलता है और फिर चीटिंग करता है और फिर इधर से आता है, फिर चीटिंग करता है और फिर उधर से खुद ही जाता है। खेलने वाला एक ही है पर दिखा रहा है दो है, चीटिंग, दंभ, आडंबर, धोखा, सेल्फ लाइंग। ये एक ऐसा विषय है कि जिस पर हरेक को स्वयं ही चिंतन करना है कि मैं अपने आप को कहां धोखा दे रहा हूं, क्या वास्तव में हम वही है जो हम दिखा रहे हैं। जब किसी कमरे में दो व्यक्ति होते हैं तो उस कमरे में दो नहीं छह व्यक्ति होते हैं। कैसे? जब किसी कमरे में दो होते तो दो नहीं छह होते हैं। एक तो वो जो है, दूसरा जो वो समझता है मैं है, और तीसरा वो जो दिखा रहा है मैं ये हूं, है नहीं पर दिखा रहा है, तो ये तीन हो गए। तो तीन और तीन छह, तो एक व्यक्ति में तीन छिपे हैं। एक तो वो जो मैं हूं, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, दूसरा जो मैं अपने आप को समझ रहा हूं, और तीसरा जो मैं दूसरों के सामने दिखा रहा हूं, जो मेरा स्वरूप ही नहीं है और जो दिखावा है वो दंभ है, क्योंकि मैं वो दिखा रहा हूं जो मैं हूं नहीं। अंदर से हलचल है विकारों की, बाहर से ब्रह्मचर्य उड़ा हुआ है, अंदर से आवेश है, क्रोध है, और बाहर से कुछ और उड़ा हुआ है। मन को क्या कर दो स्लोगन में? शीतल, शीतलता ओढ़ रखी है केवल, पर मन में आग है, दंभ है, और दंभ से मुक्त होने के लिए, इस धोखाधड़ी से मुक्त होने की विधि है कि स्वीकार कर लेना कि हाँ ये है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति ज्ञानी योगी तपस्वी बनने के बाद वो ये स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता है, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, अहंकार को बढ़ाता है। और अहंकार ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु, कि मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है। अभी दो तीन संडे पहले की मुरली में था, मैं योगी बन गया हूं, हम ज्ञानी बन गए हैं, हमने सेवाएं बहुत कर ली, हमने समझ लिया है। पहले तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि अभी कुछ नहीं समझा, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, अभी बहुत कुछ अनुभव करना बाकी है। अगर कर लिया, अगर समझ लिया होता तो अब भी इस देह से इतना ममत्व क्यों? आज की मुरली में कहा महारथी गिने चुने हैं, आज की मुरली में कहा महारथी भी नाम और रूप में टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे कड़े शब्द है बाबा के, क्योंकि बीमारी महारोग है, जन जन का है। थोड़े से ज्ञान चिंतन से और थोड़ा सा योग करने से उस बीमारी से मुक्ति नहीं होगी, तपस्या चाहिए, कठोर तपस्या, क्योंकि आत्मा में भोग के संस्कार है और आत्मा को तपाना पड़ेगा, ज्ञान अग्नि स्नान करना पड़ेगा। योग अग्नि स्नान और ज्ञान अग्नि स्नान, ये दो प्रकार के स्नान है। अग्नि स्नान ज्ञान का अग्नि स्नान और योग का अग्नि स्नान, दोनों में सोने को डाल के रखो तो कुंदन बनेगा। तो आठ निशानियां विजयी रत्नों की, जो 108 है बाबा हमेशा कहते हैं वो विजय रतन है, और फिर तो दूसरी मालाएं हैं। तो इस मुरली में दो बातें कही, एक तो अष्ट शक्तियां होगी, इसके लिए सुबह सुबह अमृत वेले ही प्रयोग करना है, ज्ञान सूर्य सामने है और उसकी सारी शक्तियां मुझ में आ रही है, फिर सारे दिन भर में कहां संकीर्ण करना है, कहां सहयोग देना है, कहां सामना करना है, कहां सहन करना है, कहां परखना है, कहां निर्णय करना है, क्योंकि जीवन भर दिन भर निर्णय करना पड़ता है, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं, क्लास में बैठूं कि बीच में से उठ के चला जाऊं, जाके सो जाऊं कि कुछ और करूं, निर्णय ही निर्णय है जीवन दिन भर सुबह से रात तक। और कई लोग इसी में ही कंफ्यूज है, टू बी और नॉट टू बी। तो शक्तियां, शक्तियों पर काम करना है, शक्तियों की स्टडी करनी है, संसार की शक्तियां नहीं। लास्ट संडे की मुरली में था, लास्ट संडे के लास्ट संडे, वहद का वैराग, उड़ता योगी, वो जो हद के योगी है क्या करते हैं, आस जमीन अग्नि और पानी के ऊपर उड़ते हैं, और तुम देहभान की जमीन, विकारों की अग्नि और पानी कौन सा, संसार के हद के आकर्षण, इन सब से ऊपर, ये बेहद के वैराग की निशानी है। तुम्हारा हठ योग नहीं है, तुम्हारा ये योग है राजयोग। तो उड़ता योगी, रमता योगी, तो ये शक्तियों पर काम करना है, क्योंकि सारे दिन भर हम अगर देखें तो शक्तियों का ज्ञान तो है पर प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। क्या हमारे सारे निर्णय सही है? क्या सारे निर्णय त्रिकालदर्शी होकर किए जा रहे हैं? क्या हमारे सारे, जितनी बार हमने परखा व्यक्तियों को, सही परखा या गलत हो गया परखने में, और फिर धोखा, व्यक्तियों को परखना, परिस्थितियों को परखना, ताड़ लेना क्या है? क्योंकि बार 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 धोखा हुआ है जीवन में, क्यों? क्योंकि शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। तो जो गलतियां की है उनसे सीखना है। योर ग्रेटेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। जो लास्ट गलती की, अंतिम गलती ही सबसे बड़ा शिक्षक है, उससे कुछ ना कुछ सीख लेना है और आगे बढ़ना है। और जो गलतियां तो सभी करते हैं, परंतु गलतियों से सीखना, सबक लेना, फिर प्लानिंग करना, उसकी गहराई में जाना, ये गलती क्यों हुई, क्या कारण था ये गलती का, और जरूर कोई ना कोई विकार उसके पीछे काम कर रहा था, इसलिए वो गलती हुई। जिसे हमने प्रेम समझा शायद वो काम था, जिसे हमने नीड समझा वो शायद ग्रीड थी, आवश्यकता को, लोभ को आवश्यकता समझ रखा था। तो सुबह भी बाबा ने कहा, स्वयं के साथ ठगी नहीं करनी है, स्वयं स्वयं को ही धोखा नहीं देना है, स्वीकार कर लो हां यह अपराध हुआ है मेरे से, ये गुना, ये अपराध हुआ है, श्रीमत को मैंने ही तोड़ा है, फिर उसको अलग 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 नाम नहीं देना है, जो है वो है, उसको सेवाओं का नाम, फुर्सत नहीं, टाइम नहीं, ये हुआ वो हुआ, इसलिए ये किया, ये सब नाम देने से हम उससे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक बीमार व्यक्ति है ऐसे, या तो हाँ, एक बीमार व्यक्ति है और वो अपनी बीमारी को स्वीकार ही ना करे तो क्या वो ठीक हो सकता है? या उसको कहो कि चलो डॉक्टर के पास, वो कहता है अभी मैं बहुत कमजोर हूं, पहले थोड़ा ठीक तो हो जाऊं फिर जाऊंगा, पहले थोड़ा ठीक होने दो फिर जाऊंगा, ठीक होने के लिए ही जाना है, और जब तक नहीं जाएंगे तब तक ठीक भी नहीं होगा। यामी गुरु भव भय वैद्यम, वो भव भय वैद्य है वैद्यनाथ, ये जो भव सागर है, भव सागर अर्थात भवसागर अर्थात दुख का, जन्म और मरण का सागर। भव अर्थात जन्म और मरण, ये जो सागर है इसे निकालने वाला। यामि गुरु भव भय वैद्य अद्वैत तत्व समाहित चित्तम। तो स्वीकार करना, हाँ ये हुआ है, कन्फेशन, स्वीकार करना कि ऐसा हुआ है, माफी मांगना, पश्चाताप करना, फिर प्रायश्चित करना, पश्चाताप फिर प्रायश्चित और फिर संकल्प और फिर प्लानिंग, और प्लानिंग करने के बाद फिर से अपना एनालिसिस कि 7 दिन में वापस तो वो नहीं हुआ, एक ही गलती बार बार व्यक्ति कर रहा है, गलती करता है पश्चाताप करता है, गलती करता है पश्चाताप करता है, आत्मग्लानी, बस इसी चक्र में फंसा है, गलती पश्चाताप आत्मग्लानी, गलती पश्चाताप आत्मग्लानी, और चल ही रहा है ये, कब से चल रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है, समझ में भी आ रहा है उसको गलती है इतनी, पर आत्मग्लानी उससे भी ज्यादा अगर वो ज्ञानी है तो, और वो काम विकार से संबंधित गलती है तो उसकी आत्मग्लानी 10 गुना है, क्योंकि रोज मुरलियों में आता है और वो पढ़ता भी है परंतु मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो ग्लानी बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है कि ये संपूर्ण पवित्रता नहीं है, इस कुचक्र से बाहर निकलना है, और विधि है इसको समझ लेना कि मैं इसमें फंसा हूं, और विधि है स्वीकार कर लेना कि यह बीमारी ने मुझे भी घायल किया है, जिसकी चर्चा रोज मुरलियों में आ रही है। आज कहा बाबा ने, योग क्या है, तलवार की धार, काटना है इससे, किसको काटेंगे इस तलवार से, विकर्म, कुकर्म, विकार, पुराने संस्कार, व्यर्थ, निगेटिव, कमजोर संस्कार, सबको काटना है इस तलवार से, तलवार की धार है ये। तो 8 शक्तियों का प्रयोग करना, सुबह सुबह उठ के पहले तो शक्तियां ले लेना सारे दिन भर में। आज बाबा ने कहा सुबह कर लिया पर सारे दिन भर का क्या, उसका क्या, बहुत कम है। बाबा ने कहा जिनका बुद्धि योग नहीं भटकता, सबका भटकता है, तो वो एक याद रखना है। शक्तियों पर काम करना है, शक्तियों के बारे में पढ़ना है, शक्तियों का चिंतन करना है, शक्तियों की कमेंट्री बनानी है, शक्तियों पर योग अभ्यास करना है, ये सारा करना है शक्तियों का, और दिनचर्या में उसको प्रयोग करना, और फिर शाम को फिर से चेक करना कि जहां सहन करना था वहां कहीं सामना तो नहीं कर लिया। व्यक्तियों को सहन करना है, परिस्थितियों का सामना करना है, उल्टा अगर कर दिया तो लड़ाई होगी, व्यक्तियों का अगर सामना किया तो क्या होगा, झगड़े। तो ये था पहला भाग। एक दूसरा ग्रुप में बाबा ने एक प्रश्न पूछा, क्या दूसरे प्रेरणादायक वाक्य क्या थे, अंत समय, आज कौन सा वार है, ज्यादा दिन तो नहीं हुए ना, दूसरे प्रेरणादायक वाक्य क्या थे, सेफ्टी का साधन क्या है, क्या है सेफ्टी का साधन, एक बाप दूसरा ना कोई, जैसे उदाहरण कौन सा दिया, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो सेफ रहते हैं, वैसे अध्यात्म में या इस ज्ञानी योगी जीवन में अंडरग्राउंड किसे किसे कहेंगे, एक उत्तर तो बाबा ने दे दिया है, एक बाप दूसरा ना कोई, अटूट संबंध, बहुत गहरा स्ट्रांग कनेक्शन उसके साथ, तो ही सारी माया ही आकर्षण ही, माया ही माया है, सब जगह माया, संसार में माया के प्रकंपन है, कीटाणु है, हर जगह वायरसेस घूम रहे हैं, कैसे सेफ रहे, एक तो बाबा ने बताया एक से प्यार, और सेफ कैसे रहे संसार में, वो साउथ में, दक्षिण में मदलसा नाम की माता थी एक, मदलसा, उसकी लोरी बहुत प्रसिद्ध है, सारे शास्त्रों में है, मार्कंड्य उपनिषद पुराण में भी उसका वर्णन आया है। छोटे से बच्चे को, बच्चा रो रहा है, वो उसको क्या कहती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, वो छोटे से बच्चे को खिलौने नहीं दे रही है कि ये ले खिलौने और शांत हो जा, उसको बता रही है कि तुम कौन हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो, संसार माया परिवर्जितोसी, त्यज मोह निद्रा, हे आत्मन मोह निद्रा को छोड़, ये सारे संसार मायावी है, इसमें तुम शुद्ध आत्मा हो, ऐसी लोरी सुना रही है वो। और वो बच्चा बड़ा होके तपस्वी बनता है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों भी ऐसे होते हैं। तो स्वयं कोई लोरी सुनानी है, ये आत्मन क्यों रो रहा है, पालने में यही बैठा है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी मोह निद्रा, त्यज मोह निद्रा, ये मोह निद्रा है, स्लीप ऑफ डिल्यूजन, से स्वयं कोई बाहर निकाल, ये आत्मन जाग, खुद ही खुद को जगाना है, क्योंकि सूक्ष्म मोह निद्रा में सभी सोए हैं। तो बाबा का प्रश्न है, वो मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं और सेफ रहते हैं, ब्राह्मण जीवन में अंडरग्राउंड जाना अर्थात क्या क्या, एक बताया एक बाप दूसरा न कोई, दूसरा ये मुरली में नहीं है, अभी मुरली में उतना ही है, और स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, ये ज्ञान कैसा है, अटपटा चटपटा और खटपटा। उधर पांडव भवन में तीन बहनों को तीन टॉपिक दिए है कल, अटपटा चटपटा अर्थात स्वादिष्ट लज्जतदार टेस्टी स्पाइसी जायकेदार, यह है चटपटा। अटपटा अर्थात कॉम्प्लिकेटेड, अटपटा अर्थात कॉम्प्लिकेटेड, अटपटी चीज है, ये समझने बहुत मुश्किल है, जटिल है, द्रु समझती नहीं है क्या है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, कभी ऐसे बोलता है कभी वैसे बोलता है, क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता है। और खटपटा अर्थात ट्रिकी, वो उसके भी आगे का है, एक है कॉम्प्लिकेटेड एक है ट्रिकी, खटपटा, खटपटा अर्थात ट्रिक, उसमें क्या कहेंगे, बड़े षड्यंत्र है, ट्रिक्स है बहुत सारी, ऐसा ये ज्ञान है। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान वंडरफुल है, अटपटा खटपटा चटपटा। तो ज्ञान का चिंतन करना ये अंडरग्राउंड जाना है। जो आत्मा ज्ञान के चिंतन में बिजी रहती है उसको संसार की माया हाथ नहीं लगा सकती, नहीं तो संसार खींचते रहता है खींचते रहता है खींचते रहता है खींचते रहता है। एक हाथी सोया है एकदम मस्ती में, और एक मक्खी आती है बिन बिनाती है, वो उसको दूर करता है, फिर से आती है फिर से फिर से दूर करता है, फिर से आती है फिर से हाथी कहता है तुम शांत क्यों नहीं बैठती, मक्खी कहती है मुझे जो कुछ दिखता है और जो कुछ सुनाई देता है और जो मैं सूंघती हूं वो सब मुझे आकर्षित करता है, जो जो मैं देखती हूं जो जो मुझे सुनाई देता है और जो जो मैं सूंघती हूं सब की ओर मेरी इंद्रिय जाती है, इसलिए मैं बेचैन रहती हूं। वो हाथी से पूछती है तुम इतने शांत कैसे बैठे रहते हो, वो कहता है मेरी सारी इंद्रिय मेरे वश में है, मैं अभी खा रहा हूं तो बस खाता हूं और कुछ भी नहीं करता, खाते समय केवल खाता हूं और कुछ भी नहीं करूंगा, चलता हूं तो केवल चलता हूं, इधर उधर बुद्धि नहीं जाने देता, यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है ये क्या वो क्या, इधर की बातें उधर की बातें, इंद्रिय वश में रखना। तो ज्ञान चिंतन ये अंडरग्राउंड जाना है। और तीसरा, बार बार अपने आप से सेल्फ टॉक, एक है ज्ञान चिंतन, फिर है अपने आप से रूढ़िया, अपने आप से बात करना, अपने आप से पूछते रहना तुम कौन तुम क्या तुमको क्या करना है कहां तक पहुंचे हो आगे क्या करना है, कितनी बार गिरे, कितनी बार संभले, क्या कारण है गिरावट के, क्यों क्यों हलचल हो गई। संडे की मुरली में, इसी मुरली में बाबा ने गंगे दादी से बात की, उसमें कुछ बातें बताई है, जो आग लगी थी उधर और सारी बहनें कितनी अचल डोल रही, बहुत बड़ी कहानी है वो 40 मिनट की तो उसका विस्तार अभी नहीं करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर उनका त्याग, उनकी तपस्या सब कुछ समाया है। तो उस मुरली में बाबा ने अचल अडोल रहने के लिए कुछ बातें बताई है। सबसे पहले तो ऐसी परिस्थिति में अचल अडोल रहना, दूसरा ये क्या हो रही है, रिहर्सल, तीसरा नथिंग न्यू, ये क्या है, जो कुछ हो रहा है नथिंग न्यू। ये केवल उस आग के लिए नहीं है, जीवन की हर परिस्थिति के लिए ये सारे नियम है, ये जो हो रहा है रिहर्सल हो रही है जीवन में, इतना कठिन पेपर, रिहर्सल, नथिंग न्यू, फिर वाहवा, फिर बेफिक्र बादशाह, और फिर एक स्लोगन दिया, कौन सा स्लोगन, कौन सा दिया, एक खोया लाख पाया, और लास्ट एक बात बताई कि ये जो अनुभव है यही तुम्हारी डिग्री है, E=D, एक्सपीरियंस ही डिग्री है। तो जब जब जीवन में नए अनुभव आए तो क्या समझना, डिग्री प्राप्त हो रही है, और अनुभव ऐसे ही आएंगे, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन, निंदा के, ग्लानी के, धोखे के, सब प्रकार के, पर हर अनुभव से व्यक्ति आगे बढ़ेगा, हर आघात उसे क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। तो स्वयं से बातें, यह है तीसरा अंडरग्राउंड। चौथा अंडरग्राउंड जाना, अर्थात संसार में माया ही माया है, कहां घुसना, अभी अभी सोच के बताओ, अंतर्मुखी तो हो गए ना, अशरीरीपन, ओके। योग, एक तो बताया कि एक बाप दूसरा ना कोई, यह निश्चय की बात है। योग ही बहुत बड़े एक अंडरग्राउंड गुफा है, योग सबसे बड़ी शक्ति है हमारी, हम इस शक्ति का कितना प्रयोग कर रहे हैं, कितना अमृत वेला शरीर से पूरा डिटैच होकर आत्मा में बल भर रहा है, इसके लिए शक्ति भरनी है उसमें। बाबा ने सुबह कहा कि बाप को भी कशिश होती है ऐसी आत्माओं की। बाप भी सर्च लाइट देते, बाप भी करंट देते, बाप भी लाइट देते, बाप भी सकाश देते ऐसी आत्माओं के, चुन चुन के। तो योग को बढ़ाते जाना है, और वो केवल बैठा हुआ ही नहीं, दिन भर भी हल्की फुल्की याद रहे कि उसमें भी थोड़े थोड़े सामान की अभ्यास, आत्मा यहां है, ऊपर से किरणें आ रही है। बेस्ट एक्टिंग किसको कहते हैं, जब आत्मा अपने 7 स्वरूपों में स्थित होकर एक्ट करती है तब वो बेस्ट एक्टिंग होती है। जब आत्मा अपने 7 स्वरूपों में स्थित होकर एक्टिंग करती है, एक्ट करती है, तब वो बेस्ट एक्टिंग कहलाई जाती है। कौन से, आनंद स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में। घृणा आ गई किसी ने कुछ कर दिया और एकदम मन में उसके प्रति द्वेष, आवेश, नफरत, और फिर ठीक हो गए, पर वो जो किया वो आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर नहीं किया, इसलिए वो बेस्ट एक्टिंग नहीं हुई। तो हमारी सारी दिन भर की सारी एक्टिंग कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होने के लिए अमृत वेला ही वो 7 स्वरूप जो है आत्मा के, कुट कुट के उसका अभ्यास करना है। उस दिन वो परमधाम की जो क्लास थी, निराकार निर्वाण वाली, परमधाम में ही लंबा समय रहने का अभ्यास, मैं निराकार आत्मा हूं, मैं निरसंकल्प आत्मा हूं, मैं निर्वाण हूं, मैं निर्बंधन हूं, मैं निराधार हूं, इस तरह का अभ्यास करना है परमधाम में। लंबा समय एक एक संकल्प को लेते हुए, मैं निराधार हूं, मैं निर्बंधन हूं, मैं निराकार हूं, मैं निर्विकार हूं, ये सारे लंबा लंबा समय परमधाम में अभ्यास करेंगे तो फिर वो नीचे सूक्ष्म वतन सतयुग कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, केवल वही पर सब कुछ है। और विकर्म जो विनाश होते बाकी किसी भी अवस्था में विनाश नहीं होते, केवल एक परमधाम में, केवल बीज रूप अवस्था में बस, जहां पे संकल्प भी कम हो गए, निर्संकल्प नीच स्वरूप में जहां आत्मा स्थित है, तत्वों के सारे आकर्षणों से जहां आत्मा मुक्त है, उस परमधाम में स्थित होकर अपने मन को संकल्प देना है कि ये जो संसार दिख रहा है, इस संसार से भी परे आत्माओं का एक जहां है, जहां की मैं हूं। सब नए सिरे से चालू कर, नए से नहीं, अभी ये परमधाम है, सूक्ष्म वतन है, फटाफट फटाफट आश्चर्य क्रिएट करना है माइंड में, विस्मय विस्मय, दो शब्द है, आश्चर्य और विस्मय, यार क्या अंतर है, विस्मय अंदर, आश्चर्य बाहर, अंदर वंडर, ओहो क्या है, कि ये जो दुनिया दिखाई दे रही है ये सारी आत्माओं का एक घर है और मैं अब वहां हूं, और वहां जाने के बाद अब यहां से संपूर्ण डिटैच्ड मैं आत्मा उस परमधाम में लंबा समय तक स्थित हूं। और अमृत वेले 10 मिनट से चालू करते करते एक एक घंटे तक उसमें स्थित होने का अभ्यास करना है, फिर सारे दिन भर की जो क्रियाएं होगी वो उसी स्वरूपों में स्थित होकर होगी। सुबह सुबह स्थिति नहीं हुए तो सारे दिन भर कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी, और फिर पश्चाताप, आत्मग्लानी, आंसू, दुख। और आत्मग्लानी एक ऐसा भाव है ब्राह्मण जीवन में, गिल्ट कॉन्शियसनेस, कि मेरे से पाप हो गया है, बस ये भाव ही उसको अब आगे बढ़ने नहीं देता, या तो खुद को माफ भी नहीं कर पाते, किसी को बता भी नहीं पाते, घुटते रहते अंदर। कितनी सारी आत्माएं ऐसी, इसके लिए अपने आप से बातें करना, बाबा से बातें करना, ज्ञान का चिंतन, बाप से बातें करना, ये भी एक गुफा है अंडरग्राउंड, उससे बातें करते रहो, कुछ भी बातें करो, जो करना है करो, उसको सब बता दो, कोई एक व्यक्ति तो ऐसा हो जिसको हमारे बारे में सब पता हो, स्थूल जगत में हो तो बहुत अच्छे, अगर किसी सब पे ही डाउट है कोई भी ढंग का नहीं है तो वो तो एक है ही, उसको सुना दो, तो अंडरग्राउंड। तो बाबा ने कहा इस बात में स्वयं को स्थित करो। एक दो पॉइंट्स आज की मुरली से आप बताएंगे, क्या कहा आज सुबह की मुरली? हाँ, गुद को ठको मत, और योग का चार्ट, योग का रजिस्टर, योग का पुरता मेल, जो नहीं रखते वो, ऐसा नहीं कि जो भाषण देते कहेंगे कि हम तो भाषण करते हैं, हम चार्ट नहीं रखेंगे, और वो भक्ति मार्ग में आते थे, ये है ज्ञान मार्ग पर, यहां पर भी आने चाहिए, आते हैं क्या, आते कब आते कि सूख गए ब्राह्मणों के अनुभव, भक्ति मार्ग में इतने आंसू बहाते थे, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, ज्ञान जब से मिल गया आंसू खलास, आंसू आना ही बंद हो गए। और तीन बिंदियों की स्मृति, और चार्ट का होना रखना है, और साइलेंस में जाने से पुरानी दुनिया भूल जाती है, और ज्ञान की तलवार, तलवार की धार, और सवेरे सवेरे आज तो भाषण लिखने के लिए भी कहा है एक जगह, बाबा बाबा करते रहो। देह के धर्म कौन कौन से बताओ, देह के धर्म, अगर एक ट्रायंगल निकाला जाए तो पहले नीचे 3 और फिर ऊपर 10, 10 छोटे छोटे, जस्ट नाम गिना रहे, टाइम पूरा हो रहा है। देह के सबसे सूक्ष्म धर्म है भूख, प्यास और निद्रा, ये सबसे नीचे ट्रायंगल के, और फिर 10 और है, देह का लौकिक धर्म, देह की भाषा, देह की कादेश मातृभूमि, देह के संस्कार, देह के भोग, देह की इच्छाएं, देह का आकर्षण, देह के संस्कार, देह के विकार, देह की वासनाएं, ये सब एक ही है पूरा, सब देह से संबंधित है। जेंडर, ये सब देहिक धर्म है। तो इन सारे धर्मों को छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। ये एक वाक्य समझाने के लिए 80 साल की जितनी अव्यक्त वाणी है और साकार मूल्य है वो सब है, सार ये एक ही है। इसी एक वाक्य में स्थित होने के लिए कोई कहते हैं ये ज्ञान चिंतन हमको नहीं करना है, हम तो बस बाबा को याद करते हैं, ये स्वमान विमान हमको मत बताओ, हम बाबा को याद करते बस, बाबा को याद करते बस, ऐसे बोलते हैं बहुत लोग। ये सब क्लासेस भी सिर्फ फालतू है सब, हम बाबा को याद कर रहे बस, सेवाओं की क्या जरूरत है, बाबा को याद करो बस। क्या याद करते हैं? याद का आधार योग, याद का आधार ज्ञान है, और ज्ञान निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। हर दिन नए योग के प्रयोग कहां से आएंगे? चिंतन से आएंगे, मनन से आएंगे। तो ये कुछ नहीं होता है कि हम तो खाली बाबा को याद करते हैं सब बाजू रखो, ऐसा नहीं होता है। तो देह के धर्म पर चिंतन करना है, देह के क्या धर्म है, कौन से वो चीजें है देह खींचता है, देह के संबंध, देह के धर्म, लौकिक धर्म, ये सारी जो बातें बताई, ये सारे 10 चीजें है, वो सारा उसमें आता है देह के धर्म। ये सारे देहिक धर्म को बाजू रख, मैं आत्मा हूं देह अलग, नच भाति भूत संगम, मैं इधर शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, संपूर्ण मुक्त, और जा रहे ऊपर। और कोई पॉइंट आज की मुरली से, इधर से कोई एक पॉइंट बता दो फिर क्लास पूरी करते हैं। हाँ, किसी को दुख नहीं देना है, वो हो गया, जो हो गया वो नहीं बताओ। बाबा का नाम क्या क्या क्या, बाप के पूरा पॉइंट, और पोता मिल में हर दिन नया पोता मिल बनाना है। एक चार्ट जो रेडीमेड आता है मधुबन से, वो ही कुछ दिन फॉलो करते हैं फिर वो रूटीन हो जाता है, फिर तो नींद में भी लिखते हैं चार्ट 50%, 60%। हर दिन नया चार्ट बनाना है, हर दिन नया चार्ट। जैसे आज की मुरली में चार्ट है, आज की मुरली में जो जो प्रश्न आए हैं, सारे दिन भर स्वदर्शन चक्र कितना घुमाया, कितनी बार घुमाया, कितनी बार याद आया बीच में। आज की मुरली में एक जगह है, ये बाप के लिए भी ड्रामा है, इसके लिए भी ड्रामा है, तुम्हारे लिए भी ड्रामा है, ड्रामा की पॉइंट्स कितनी याद की आज, ये है चार्ट। तो सुबह मुरली लिखते समय ही एक चार्ट तैयार करना 5 पॉइंट्स का, मुरली चालू है उधर पॉइंट्स, प्रश्न लिख के छोड़ देना, प्रश्न लिख के छोड़ देना, प्रश्न, तो ये चार्ट बन गया। अब रात को सोते समय इस चार्ट को भरना है, हर दिन नए चार्ट को भरना है, एक ही एक चार्ट फिल नहीं करना है, हर दिन नया नया चार्ट, मुरली के आधार से, वरदान से उठाओ, स्लोगन से उठाओ, दृष्टि को अलौकिक कितना किया, मन को शीतल कितना किया, और बुद्धि में रहम दिल कितना रहे वो उस चार्ट में। तो नया चार्ट रोज, एवरीडे न्यू चार्ट, ठीक है। ओम शांति।